मुसाफिरों को और बीमारों को रियायत दी गई है, इसी से आगे बढ़ाते हुए वो लोग जिनके काम की नौइयत बहुत सख्त होती है, ख़ासतौर पर मई जून के मजदूरी लोग करते हैं, तो उनको भी ये रियायत हासिल हो और वो इसको आगे ले जाकर नवंबर दिसंबर में सर्दियों में अगर रोज़ों को पूरा कर लें तो इसमें कोई हर्ज की बात तो नहीं?
कुरान मजीद ने बड़ी उसूली बातें इसमें की हैं और ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, इसलिए कि इसमें बहुत सी चीज़ों की वजाहत हो जाएगी। एक तो ये समझ लीजिए कि कुरान जब किसी चीज़ में इस तरह का इस्तिस्ना बयान करता है या रियायत देता है, तो कुरान का तरीका ये नहीं है कि वो उसको एक कायदा बना दे, वो उसमें इतलाकी तरीका इख्तियार करता है। आम हालात क्या पेश आती है, मरीज होगा या मुसाफिर होगा
जी,
तो उसका जिक्र कर दिया।
ठीक,
अच्छा, और हमें तरबियत दी गई ये कि हम ये देखेंगे कि उसमें बायस क्या चीज़ है। चुनांचे हमारे फुकहा ने भी इससे पहले बहुत सी चीज़ों को शामिल किया। मसलन उन्होंने देखा कि जो हामिला औरत है वो मरीजा तो नहीं होती,
ठीक,
लेकिन एक ऐसी मशक्कत से गुजर रही होती है कि जिसमें उसको भी इस रियायत से फ़ायदा उठाने का हक होना चाहिए। उन्होंने देखा कि एक बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ मुर्जिया, वो भी इसी मशक्कत से गुजरती है। इसी तरह उन्होंने देखा कि आदमी बाज़ वक़्त बूढ़ा हो जाता है, तो उसके लिए भी ये मशक्कत उठाना आसान नहीं होता। तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़े हो गई कि मरीज और मुसाफिर का जिक्र बतौर मिसाल हुआ है,
ठीक,
आमतुल वरूद चीज़ की हैसियत से हुआ है। बुनियादी बात क्या है जो उसके अंदर उसूल कार फरमा है, उसूल क्या है कि आपको कोई मुश्किल पेश आ गई, कोई मशक्कत पेश आ गई, ये हो गया। अब इसी से एक और बात समझ लीजिए, और वो ये कि इबादात अल्लाह ताला के साथ हमारे ताल्लुक का इजहार है, अलामती इजहार है, इनके पीछे एक मोहब्बत का जज्बा होता है, अल्लाह ताला की अजमत के एतराफ़ का जज्बा होता है, अपनी आजजी के एतराफ़ का जज्बा होता है। इसमें अल्लाह ताला ने बिल्कुल मुख्तलिफ उसूल इख्तियार किया है कि यहाँ रुख्सत के लिए मशक्क़त काफ़ी है। चुनाचे इसी रोज़े की आयात में बयान किया कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह इबादात के मामले में तंगी नहीं डालना चाहता, वो तुम्हें आसानी में रखना चाहता है।
ठीक,
यानी अल्लाह ताला ये नहीं चाहते कि ऐसी मुश्किल में इबादत में मुब्तला कर दिया जाए, क्योंकि इबादत की रूह मोहब्बत है, वो मजरूह होगी उसके नतीजे में। मशक्कत तो इंसान उठाता है, यहाँ इस्तरार का उसूल नहीं है, हराम हलाल में इस्तरार का उसूल है। यानी अगर कोई चीज़ हराम की गई है और किसी मजबूरी में आदमी उसको खाने के लिए, जैसे कि आपने देखा कि जहाँ हराम चीज़ों का जिक्र हुआ है तो वहाँ पे भी इस्तिस्ना बयान हुआ है, वहाँ मशक्कत नहीं कहा, वहाँ ये कहा है कि अगर तुम मुस्तर हो जाओ, इल्ला मस्तुर्रा, मुस्तर हो जाओ, यानी मुस्तर होने का क्या मतलब, जान पर बन गई, फिर मजीद शर्त लगा दी उस पर कि बस उतनी ही लोगे जिससे जान बचाई जा सकती है,
ठीक,
हद से बढ़ने वाले नहीं होगे, वहाँ ये है। तो वहाँ इस्तरार का उसूल है, लेकिन यहाँ मशक्कत का उसूल है। तो इबादात में जब मशक्कत पैदा हो जाए तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। चुनाचे देखिए, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि आपने ऐसी हर रुख्सत से फ़ायदा उठाया, यानी ये नहीं किया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, आप इबादात के मामले में रात रात भर खड़े रहते थे
जी।
लेकिन जो इबादात में रुख्सतें दी गई हैं, यानी अगर कसर की रुख्सत दी गई तो आपने कसर की,
ठीक,
अगर जमा करने की रुख्सत दी गई तो आपने जमा किया, अगर जुराबों पर मसे की रुख्सत दी गई है तो आपने जुराबों पर मसा किया, अगर तयम्मुम की रुख्सत दी गई है तो आपने तयम्मुम किया। यानी ये नहीं किया कि भाई तुम तयम्मुम कर लो, मैं तो कोई पानी ढूंढूंगा हर हाल में। तो इबादात में जो अल्लाह ताला ने कायदा बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी को नमूने के तौर पर पेश किया। इबादात में ये पसंदीदा नहीं है कि आप मशक्कत का तरीका इख्तियार करें। तो अगर फ़र्ज कर लीजिए कि बहुत शदीद गर्मी है या इस तरह की सूरत पैदा हो गई है कि आदमी तहम्मुल नहीं कर सकता, भाई सफर में भी तो यही होता है ना, अगर आप ये कहें कि आदमी रख ही लेगा तो सफर में भी रख ही सकता है। अच्छा, सफर अब आसान हो गए हैं तो बाज़ू का जरूरत ही नहीं महसूस होती, तो जहाजों के सफर हैं,
बिल्कुल सही,
आप एयर कंडीशन में सफर कर रहे हैं तो जरूरत ही नहीं लगती बाज़ मौकों के ऊपर, और बाज़ दूसरे काम ऐसे हैं जिसमें इतनी मशक्कत पैदा हो जाती है कि उसमें ये रियायत मिलनी चाहिए। इसी तरह मैंने ये अर्ज किया था, जिसके ऊपर बहुत हंगामा भी हुआ, कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ रोज़ा काबिले बर्दाश्त नहीं रहता, यानी उसके औकात इतने बढ़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने उसूल क्या बयान किया कुरान मजीद में? उसूल ये नहीं बयान किया कि जहाँ मशक्कत पैदा हो जाए रोज़ा छोटा कर लिया करो, ये उसूल तो नहीं बयान किया,
ये नहीं किया,
यानी ये नहीं कहा
नहीं किया
कि मरीज या मुसाफिर जो है वो दो घंटे का रोज़ा रख ले, یا 4 گھنٹے کا روزہ رکھ لے، اس میں یہ کہا ہے فعدت من ایام اخر، یعنی وہ دوسرے دنوں میں اس کو کر
مؤخر کر دے.
تو اس وجہ سے میرے نزدیک پسندیدہ یہی ہے کہ اگر ایسی کوئی مشقت، اور مشقت کا فیصلہ فرد کرے.
بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں ایک دفعہ تھے تو آپ نے وہ روزہ افطار کیا تھا، اور پھر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آج جو ہے وہ روزہ نہ رکھنے والے بازی لے گئے.
جی ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، ایسے ہی دیکھیے نا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے استدلال کیا ہے، جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آپد ہپی میں اجازت دی ہے
جی
بعض چیزوں کی، جیسے جی تیمم کی اجازت دی ہے یا اور اجازتیں دی ہیں یا قصر کی اجازت جی دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو سفر تک اسے عام کر دیا، وہاں تو جنگ و جدال کی آپد آپی کا ذکر جی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی دی ہوئی رخصت، اللہ کا کیا ہوا صدقہ ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ. تو عبادات میں جو رخصتیں ہوتی ہیں، یہ عبادات ہم کو روزانہ کرنی ہے، نماز 5 وقت پڑھنی ہے، اسی طرح روزوں کا معاملہ ہے، تو اس میں جو رخصت بھی دی گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی عنایت سمجھنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ. عبادت کا جذبہ قائم رہنا چاہیے ہر حال میں، اس کی فارم کی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اس معاملے میں یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو انسان ہلاکت میں ڈال لے، یا یہ کوئی بس جان ہی پر بنائے گی تو اس میں رخصت ہوگی. ظاہر ہے کہ جب آپ تیمم کرتے ہیں تو جان پر تو نہیں بنی ہوتی، یا آپ حجرابوں پر مسا کرتے ہیں تو جان پر تو نہیں بنی ہوتی نا، اتارا ہی جا سکتا ہے ان کو. بہت سرد پانی بعض اوقات، یعنی ایسا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے کہ جس میں خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہو جائے گا یا ایسی صورت ہوگی، ایسے سب موقعوں کے اوپر جو رخصتیں دی گئی ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے.